दूसरा सैमुअल अध्याय 16 पद 1 से लेकर 3 तक। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मेफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिक्कियां, धूपकाल के फल की 100 टिक्कियां और कुप्पी भर दाकमधु लदे हुए उसे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं, और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाकमधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वो उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वो तो ये कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इसराइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। दूसरे शब्दों में वो मेफीबोशेत के बारे में ये कहकर कि मेफीबोशेत यूं कह रहा है, मैं राज्य वापस लेने जा रहा हूं, दाऊद से झूठ कह रहा था। ये सीबा का एक झूठ था। अतः दाऊद ने कहा, जो कुछ मेफीबोशेत का था वो सब तुझे मिल गया। जी हां, बाद में दाऊद को पता चल जाता है कि वो उनसे झूठ बोल रहा था। जब वो और आगे गया तो दाऊद का एक और रिश्तेदार जो उसका भाई लगता था और जिसका नाम शिमी था उसे मिलने आया। अध्याय 16 पद 5 और 6। और वो कोसता हुआ चला आया, वो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। तब अभिषेक ने राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे, उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। आप जानते हैं कि दाऊद में जोश नहीं रहा गया था। उसने सोचा, हो सकता है कि परमेश्वर ने ही उसे कोसने भेजा हो, शायद परमेश्वर के मन में यही विचार हो। इस पल तक ये समझ जाने के बाद कि यह सब मेरे पाप का फल है, दाऊद पूरी तरह से टूट चुका था। फिर भी यहां दाऊद का परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की इच्छा के प्रति और परमेश्वर के न्याय के प्रति अद्भुत समर्पण था, और इसी समर्पण में दाऊद को परमेश्वर के मन में वास करने वाला मनुष्य बना दिया था। वो अब अपने आप को परमेश्वर के और उसके न्याय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहता था। परमेश्वर, अगर तुम मुझे समाप्त करना चाहता है, अगर तुम मुझे नष्ट करना चाहता है, अगर तुम मुझे कोसना चाहता है, परमेश्वर तू जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहता है कर। दाऊद विरोध नहीं कर रहा था, उसका जीवन अब एक पूरा और संपूर्ण समर्पण का जीवन था। वो ऐसी स्थिति में आ गया था जहां इंसान पूरी तरह टूट जाता है और परमेश्वर की इच्छा के निमित्त संपूर्ण समर्पण के लिए ये अत्यधिक आवश्यक है। जोश का अंत देखना बहुत दुखदायी होता है, तथापि संपूर्ण समर्पण को देखना बड़ी ही मन भावन होता है। जब सामना करना, वाद विवाद करना आदि सब कुछ समाप्त हो जाता है, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही हो। दूसरा सैमुअल 16 पद 15 और 21। अबशलोम सब इसराइली लोगों समेत यरूशलेम को आया और दाऊद अपनी 10 रखेलियों को भवन की देखभाल के लिए छोड़ गया था। और अहितोपेल ने अबशलोम से कहा, उनके पास तू जा। अब ये दिखाता था कि दाऊद और अबशलोम के बीच में एक खाई बना दी गई थी जो कभी नहीं भर सकती थी। दूसरे शब्दों में लोग अबशलोम के साथ देने में सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अब किसी भी तरह से दाऊद इस पाप को माफ नहीं करेगा। इसके अलावा ये राजाओं का एक रिवाज भी था, जब एक राजा दूसरे को जीतता था तब राज्य को हारे हुए राजा की पत्नियों के साथ ले लिया जाता था, जैसे दाऊद ने शौल की पत्नियों को लिया था। पूर्व राजा की पत्नियों को लेना उस राज्य पर प्रभुता को दर्शाता था, अतः अबशलोम ने भी ऐसा ही किया और इस प्रकार अपने और अपने पिता के बीच कभी न भरी जाने वाली खाई तैयार कर दी। दूसरा सैमुअल 16:23। अहितोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशलोम को जो जो सम्मति देता वो ऐसा होती थी, मानो परमेश्वर का वचन। नातान के आगे की भविष्यवाणी भी पूरी होती थी जब हम दाऊद की पत्नियों को सारे लोगों के सामने सूरज के नीचे अपमानित होते हुए देखते हैं। हमारा अगला अध्ययन 17 से आरंभ होगा। एक बात मैं भूल गया था, 14 के 25वें पद में देखिए जहां अबशलोम के रूप का वर्णन है। समस्त इसराइल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशलोम के तुल्य और कोई नहीं था, वरन उसमें नाक से सिक तक कुछ दोष ना था। बाहर से वो एक बहुत ही रूपवान पुरुष था, परंतु अंदर से वो एक चलाक और क्रूर मनुष्य था। फिर वो बताता है कि हर साल वो अपने बाल मुड़वाता था, क्योंकि उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वो उन्हें मुंडाता था और उसके सिर के बाल तौलकर राजा के तौल के अनुसार 200 शकेल भर होते थे, अतः हर साल उसके बाल 3-4 पाउंड बढ़ जाते थे। अब उसकी तनख्वाह का एक हिस्सा उसके सिर मुंडवाने के ऊपर था। जब वो उसके बाल काटकर तौलते थे तब उनका भार प्रतिवर्ष या लगभग 2 किलोग्राम होता था, परंतु ये बहुत दिलचस्प था कि इतने बालों के कारण वो मरा। वो जंगल से होकर भाग रहा था तब उसके बाल एक पेड़ की शाखा में फंस गए और वो वहां बालों के द्वारा लटक गया और योआब ने आकर भाला उसके हृदय में भोंक दिया। अतः आप जानते हैं कि जहां कुछ फायदा हो सकता है वहां कुछ नुकसान भी हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम आपको इन शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो हम आपके वचन को पढ़कर पा सके। परमेश्वर, हमें आपके उद्देश्य और इच्छा के ज्ञान में धनी बनाए। परमेश्वर, सच्चाई और अनुग्रह में बढ़ने में आपकी सहायता करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे हृदय में बस जाए और हम आपके कहे हुए वचन के द्वारा धुलकर साफ हो। यीशु के नाम में आमीन।